जी की तीन नारियां जिनके कारण रामायण जी में तीन अति महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं। सर्वप्रथम ताड़का, दूसरी नारी मंत्रा और तीसरी नारी शुभनखा। जब से तीसरी नारी का प्रवेश हुआ है रामायण जी में, विचित्र घटनाएं, दुखदायी घटनाएं घटित हो रही हैं। पंचवटी में थी तो वहां पर अपने भाइयों का हनन का कारण बनी। अब लंका में प्रवेश किया है, रावण को उकसाया है। अब वहां क्या होने वाला है आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आध्यात्मिक दृष्टि से देवियों सज्जनों, ये तीन नारियां कौन है? आध्यात्मिक दृष्टि से ताटका को क्रोध का प्रतीक माना जाता है, मंत्रा को लोभ का एवं शुभनखा को काम का प्रतीक, वासना का प्रतीक माना जाता है। वासना जब भी जिंदगी में किसी भी आयु में किसी भी स्थान पर जहां भी प्रवेश करेगी, कुछ ना कुछ डिजास्टर ही करेगी। इसका स्वभाव है, कुछ ना कुछ बिगाड़ करके ही रहेगी ये वासना। तरह तरह की वासना, धन की वासना, काम की वासना, यशमान की वासना, प्रशंसा की वासना, बड़े बनने की वासना, कुर्सी की वासना, तरह तरह की वासनाएं हैं। वासना एक नहीं, अनेक वासनाएं कही जाती हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी वासना जिंदगी में आ जाती है तो वह अपना भयावह रूप दिखा के रहती है। बहुत भयानक काम है इसका, बहुरूपी है, बहुत तरह से, बहुत रूपों से जिंदगी में प्रवेश करती है। तो हम तो साधक हैं, हम तो अपने लिए देखना है इससे किस प्रकार से बचा जाए। संत महात्मा, मुख्य बात जो हमें सीखनी है वो ये है कि इस वासना का रूपांतरण, इसको अगर कोई चीज इसका निराकरण कर सकती है तो वह है उपासना। इसका एंटीडोट क्या है? उपासना। किस प्रकार से उपासना वासना का रूपांतरण करती है? बड़ा विचित्र ढंग है देवी सज्जनों, और हम सब के लिए जिंदगी में इसका आना बहुत जरूरी। उपासना जरूर आए तभी वासना जो है वह नलीफाई होगी, तभी वासना उन्मूल होगी, नहीं तो ये अंतिम क्षण तक पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा इसका भयानक रूप है। किसी न किसी प्रकार की वासना चिपकी ही रहती है, अंदर घर की रहती है, इससे छुटकारा इतना आसान नहीं। हाँ, उपासना जिंदगी में आ जाए, उपासना का मर्म व्यक्ति समझ जाए, उपासना की विधि सीख जाए, उपासना का ढंग सीख जाए, परमेश्वर की कृपा का व्यक्ति उपासना के माध्यम से पात्र बन जाए, तो वासना वहां ठहर नहीं सकती, दोनों इकट्ठे नहीं ठहर सकते। तो दंडक मन में मन यदि कहा जाए तो वहीं शुभनखा भी रहती है और शबरी भी रहती है। ये मन भी बड़ी विचित्र चीज है, हमारे पास दोनों को कंटेन कर सकता है, ये दोनों को रख सकता है अपनी अपनी जगह पर। वासना को भी अपनी जगह पर रखता है और उपासना को भी अपनी जगह पर रखता है। होशियार है मन, इसीलिए ये बहुत बड़ा कंट्रोलर माना जाता है, बहुत बड़ा हमारे शरीर में बहुत बड़ा अदृश्य अंग दिखाई नहीं देता, लेकिन सो वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली नाच नचाने वाला। आज थोड़ी चर्चा भक्तजनों वासना की करते हैं। कहते हैं धन की वासना रखता हुआ साधक यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे सर्प की योनि मिलती है। ये शास्त्र के शब्द हैं। संपत्ति, तरह तरह की संपत्ति है, घर के प्रति, कोठी के प्रति वासना है, बगीचे के प्रति वासना है, इत्यादि इत्यादि जो भी संपत्ति में आता है, संपत्ति के प्रति यदि वासना है और उस ऐसी वासना में, ऐसी आसक्ति में साधक की मृत्यु हो जाती है तो उसे प्रेत योनि मिलती है, ऐसा शास्त्र कहता है। सत्य होगा, ये जो बातें शास्त्र ने कही हैं वे कोई गलत तो नहीं है, झूठ नहीं है। परमेश्वर के अधीन है सब कुछ, जो मर्जी कर सकता है वही सब कुछ बदल सकता है, और तो कोई नहीं बदल सकता। अन्यथा जो शास्त्र में लिखा है, सामान्यतः परमात्मा भी नहीं बदलता उसे, शास्त्र को उच्च स्थान देता है परमात्मा भी, ये मेरे से भी उच्च है। ही रिस्पेक्ट्स स्क्रिप्चर्स ए लॉट। एक साधु, एक संत, बहुत अच्छा संत, सुगत संत, भजन पाठ में रत रहने वाला, आज भ्रमण करता करता जयपुर पहुंचा है। सच्ची घटनाएं हैं देवियों सज्जनों, कोई 20-30 शिष्य भी हैं उनके साथ। शाम का समय, रात्रि का आगमन होने वाला, रहने के लिए कोई स्थान नहीं, खाने को कुछ पास नहीं, ढूंढ रहे हैं कोई स्थान, 20-25 लोगों के लिए स्थान चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कोई ऐसी धर्मशाला चाहिए, कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां ये सब लोग रखे जा सके और इनको भोजन भी मिल सके। पास तो होता नहीं, टिफिन भी साथ नहीं होता इनके, तो कहीं ना कहीं प्रबंध होना चाहिए, ऐसी सोच में विचर रहे थे। एक लड़का मिला, महात्मा जी क्या ढूंढ रहे हो, रहने के लिए जगह? हाँ हाँ, आओ मेरे साथ, मैं आपको एक जगह दिखाता। दूर से इशारा किया, वो सामने कोठी है, देखो एकांत कितनी अच्छी रहेगी आपके लिए, कोई नहीं रहता, खाली पड़ी है, वहां जाकर रहो। संत को बात जच गई, बहुत अच्छी बात है, खाने का बाद में देखिए, कम से कम सिर ढकने को तो स्थान हो जाएगा, न भी खाने को मिल जाएगा, रात को सोना ही है, सो जाएंगे, भजन कीर्तन कर लेंगे। जैसे ही कोठी में प्रवेश किया, सब द्वार खुले हैं, खिड़कियां खुली हैं, कोई ताला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुंडी नहीं, कोई कुंडा, कुछ नहीं। एक ही चक्कर लगाया संत महात्मा ने, लगा प्रेत का वास है यहां पर, भूत बंगला है ये। लड़के ने शरारत की है हमारे साथ, संत बहुत जल्द बात को समझ गए। अब रात्रि अंधकार हो गया है, तो कहीं जाने का है नहीं, हमारी कोई जान पहचान नहीं जयपुर में, आसपास कहाँ जाएंगे हम, खाने को कुछ पास नहीं है। अटैच सोचा, शिष्यों से कहा, बेटा कुछ है नहीं अपने पास, और भूखे पेट दिन भर के चले हुए हैं, नींद भी नहीं आएगी, आओ भजन कीर्तन करते हैं। भजन कीर्तन शुरू हुआ, घंटा, दो घंटे, तीन घंटे भजन कीर्तन चलता रहा। संत क्या देखते हैं, पता नहीं औरों को दिखाई दिया है कि नहीं दिखाई दिया, संत क्या देखते हैं, एक विचित्र सी आकृति उनके सामने प्रकट हुई है। कहा, महात्मन मेरा कल्याण करो, मैं बहुत दुखी हूं, अपना परिचय दो। महात्मा ने कहा, मैं इस कोठी का मालिक, बड़े भाव चाव से ये कोठी बनवाई थी, सेठ इतना पैसा खर्च किया इसके ऊपर, ऐसी कोठी जयपुर एवं आसपास कहीं नहीं। आप देख रहे हो अभी भी खंडर होने के बावजूद भी कितनी खूबसूरत है। एक एक ईंट मेरे हाथों से लगी हुई, एक एक पत्थर मेरे हाथ से लगा हुआ। बगीचे बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत लगाव था बगीचे को साथ। मेरी संतान बहुत लायक नहीं थी, मुझे हमेशा यही भय रहता था इस कोठी का क्या होगा, ये बर्बाद कर देंगे। इनसे ऐसी कोठी कभी दूसरी बननी नहीं, मैं इसी की देख रेख में, इसी की देखभाल में लगा रहता। बगीचे में कोई पौधा खराब हो जाता तो मेरा दिल खराब हो जाता, मैं मुरझा जाता। कोई यहां की कोई चीज खराब हो जाती तो मेरा हृदय बिलखता। अंतिम दिन आ गए, मेरी सूरत इसी कोठी में और मेरी मृत्यु हो गई। यमराज ने फैसला दिया, इस व्यक्ति की सूरत कोठी में, इसे प्रेत आत्मा बना के वहीं डाल दो। तब से मैं यही हूं। मेरे बच्चों ने जो अंत्येष्टि इत्यादि करते हैं, जो अंतिम कर्म करते हैं, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया। मैंने पहले अपने पोते पोती खाए, सच्ची बातें अभी भी होती हैं ये। आप कभी मेरी जगह पर वहां खड़े होकर देखो तो ये सब कुछ सुनने को मिलता है मुझे। पहले मैंने अपने पोते पोती को खाया, उसके बाद अपनी पत्नी को खाया, अब जो आता है इस कोठी उसे खाता हूं। ये लड़के शरारती हैं, घुमा फिरा के लोग यहां छोड़ जाते हैं। मध्य रात्रि आवाज सुनते हैं, मार दिया मार दिया मार दिया, तो तालियां बजाते हैं। कोई ऐसे बलवान आ जाते हैं जैसे आप, तो मैं उनको डरा धमका के रात को वहां से निकाल देता हूं। चारपाई उल्टी कर दी, ये कर दिया वो कर दिया इत्यादि इत्यादि, ये सब बातें होती हैं। ये बातें कोई कंकॉक्टेड नहीं है, अभी भी देखने सुनने को मिलती हैं। ये ऐसा होता है हमारे साथ, ऐसा हमारे घर में होता है, ऐसा ये होता है, ऐसा वो होता है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, पर होती हैं ये सब बातें अभी भी। महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा कल्याण करो। अपना दुख महात्मा के सामने रख दिया। महात्मा ने कहा बैठो, भजन कीर्तन चल रहा है। भजन कीर्तन के बाद अरदास होगी, अरदास के बाद जो कुछ भी हमारे पास प्रसाद पड़ा हुआ है वह प्रसाद बटेगा, तेरा हिस्सा भी रखेगा। यदि तू प्रसाद ले गया तो हम समझ लेंगे तेरा कल्याण हो गया, यदि तू प्रसाद न लेके गया तो मुझे फिर कभी मिलना, महात्मा ने कहा। मानो तब मैं कुछ और करूंगा, तब ये होगा कि मेरे भजन कीर्तन से तेरा कल्याण नहीं हुआ तो कोई और साधन ढूंढूंगा जिससे तेरा कल्याण हो, बशर्ते तू चाहता है कि तेरा कल्याण हो। हाँ महात्मा, बहुत देर हो गई मुझे सहते सहते, अब लाचार हो गया हुआ, अब मुझे कल्याण चाहिए। आप आए हो, कभी आप जैसा कोई व्यक्ति यहां आया ही नहीं जो मेरा कल्याण कर सकता, इसलिए मैंने सबको खाया तड़पाया रुलाया। आप आए हो तो मुझे मेरी उम्मीद जगी है कि मेरा कल्याण हो जाएगा, मेहरबानी करके मेरा कल्याण करके जाओ। कीर्तन की समाप्ति हुई, अरदास हुई, प्रसाद रखा था प्रीतात्मा के लिए, प्रसाद नहीं था, उठा लिया। जाते वक्त प्रेतात्मा किसी भी रूप में किसी भी ढंग से हाथ बांधे, महात्मा को यह सब कुछ दिखाई दे रहा है, हाथ बांधे खड़ा है महात्मन, चरण वंदना। मेरा हृदय आपके इस उपकार को कभी भूलेगा नहीं। संत महात्मा वास्तव में उपकारी होते हैं, आज देख लिया आपने। एक भटकती हुई आत्मा का कल्याण कर दिया। न जाने कब से, कितने वर्षों से मैं भटक रहा हूं, न मेरे खाने की चिंता है किसी को, न मेरे पीने की चिंता है। किस प्रकार से मैंने जिंदगी यहां गुजारी है, दिन यहां गुजारे हैं, मैं ही जानता हूं। प्रेतात्मा कोई सुखी आत्मा तो नहीं होती है, दुखी आत्मा होती है, निराश हताश भटकती हुई आत्मा इन्हें कहा जाता है। संपत्ति के साथ अशक्ति रखता हुआ व्यक्ति मर जाता है तो शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति को प्रेतात्मा की योनि मिलती है। वासना शुभ नखा भी कुछ ऐसा ही कुछ करेगी, जहां भी ये आएगी वहां कुछ ना कुछ इस प्रकार का रंग दिखा के रहेगी। कभी समय लगा देवी सचनो, ये तो ऐसी फजूल की बात थी। जो असली बात हमारे लिए है वह तो ये है, इस वासना का रूपांतरण उपासना में कैसे होना चाहिए, या उपासना इसका रूपांतरण कैसे करती है। सीखना तो ये है, देखना तो ये है। किस दिन समय लगा तो ये चर्चा करेंगे, अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।